सुर्खियों में
ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए इजराइल ईरान संघर्ष में ताजा घटनाक्रम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अशोक सज्जनहार, पूर्व राजदूत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
इसराइल ईरान संघर्ष के बीच जो आज एक बड़ी महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी खबर सामने आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब सोशल मीडिया पर तेलवीव और तेहरान के बीच पूर्ण संघर्ष विराम के बारे में कहा कि दोनों देश इस संघर्ष विराम के लिए सहमत हो गए हैं, इसके बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता वाली इस बात को स्वीकार किया और कहा कि ईरान के साथ जो संघर्ष विराम है उसके लिए इसराइल सहमत है। और थोड़ी ही देर पहले मिली जानकारी के मुताबिक इसराइल और ईरान के बीच संघर्ष विराम की रिपोर्टों और इसमें कतर और अमेरिका की भूमिका का अपने एक वक्तव्य में भारत के विदेश मंत्रालय ने स्वागत किया है। और बीती रात के अगर हम घटनाक्रम को भी देखें तो ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी एयरबेस पर अपने हमले किए थे और इससे पहले जो दो दिन का पूरा घटनाक्रम था उस पर हम विस्तृत चर्चा कर ही चुके हैं। तो हम इस पूरे विषय को समझने के लिए जुड़ चुके हैं पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार जी के साथ। एम्बेसडर सज्जनहार, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
जी बहुत धन्यवाद कमल जी मुझे आमंत्रित करने के लिए।
जी तो सबसे पहले तो हम आपसे वही एक मूल सवाल करना चाहेंगे कि ताजा घटनाक्रम या ताजा परिदृश्य को आप कैसे देख रहे हैं, खासतौर पर जो पिछले दो दिन और बीते 12 घंटे में जो कुछ हलचल इस कॉन्फ्लिक्ट में जो बातें सामने आई हैं और आज फिर संघर्ष विराम की बात सामने आ रही है, तो इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं?
जी बहुत धन्यवाद फिर से। देखिए मैं समझता हूँ आपने कहा जो ये बड़ी हलचल की घटना थी जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये ऐलान किया जो संधि हो विराम हो गया है, युद्ध विराम हो गया वहां पर, तो मैं कहूंगा इसको सुनकर पूरे विश्व ने एक राहत की सांस ली होगी
जी।
क्योंकि किसी को नहीं मालूम था जो जब दो दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने वहां पर ईरान के तीन ठिकानों पर हमला किया था और उनको जो सबसे बड़े उनके अपने बॉम्ब्स हैं GBU-57 जिसका एक का भार 13,600 किलोग्राम है, उनको उन्होंने उनके फोर्दो के जहां पर सेंट्रीफ्यूजेस रखे हैं और जहां पर यूरेनियम इनरिचमेंट की उनकी व्यवस्था है उसको नष्ट करने के लिए उसका वहां पर हमला किया था, तो तब ये समझा जा रहा था जो ईरान चुप नहीं बैठने वाला है, वो
जी।
जो अमेरिका की बेसिस हैं उसके ऊपर हमला करेगा। और ये वाला जो युद्ध है ये फिर एक दोनों देशों के बीच में ईरान और इसराइल के बीच में युद्ध होने के बजाय और अमेरिका की एंट्री से ये क्षेत्रीय युद्ध में परिवर्तित हो जाएगा
जी।
परंतु ये बहुत खुशी की बात है, बहुत ही संतोष की बात है जो ये युद्ध विराम हो गया है। और पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने इसका ऐलान किया, उन्होंने जब हमले किए थे दो दिन पहले तब उन्होंने ये कहा था कि हमारा इसमें गंतव्य यही था, हमारा ऑब्जेक्टिव यही था जो हम ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज को पूरी तरीके से नष्ट कर दे क्योंकि हम नहीं चाहते जो ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट करे और परमाणु अस्त्र बनाए। तो अमेरिका का तो ये बिल्कुल मान्य था और जब इसराइल और ईरान ने भी ये मान लिया और इससे पहले ईरान ने जो अमेरिका की बेस है कतर पर वहां पर कल रात को हमले किए, कुछ मिसाइल छोड़ी, उन्होंने कहा जितने अमेरिका ने बम गिराए थे उतनी ही मिसाइलें हम छोड़ रहे हैं, परंतु कुछ मिसाइलों को कतर ने इंटरसेप्ट भी कर लिया, परंतु उसके बाद पहले उन्होंने कतर को बता दिया था जो हम ये मिसाइल आपके यहाँ पर अमेरिका की बेस पर हम इस समय छोड़ने वाले हैं। तो ये समझा जाए जो ईरान का ये प्रोफॉर्मा और सिंबॉलिक एक हमला था अमेरिका के ऊपर और वो भी नहीं चाहते थे जो युद्ध को आगे बढ़ाया जाए, तो ये मैं कहूंगा बड़े संतोष की बात है।
हम पिछले हफ्ते के अगर ट्रंप प्रशासन के बयान को देखें तो उन्होंने कहा था कि अभी दो हफ्ते बाद ये तय करेगा कि अमेरिका इस पूरे संघर्ष में किस तरह से भागीदार होगा, लेकिन हमने देखा कि अमेरिका की फिर सक्रियता बढ़ी और ये विश्व के समक्ष एक चिंता बढ़ी और खासतौर पर जो मध्य पूर्व है उन सभी देशों में भी कि जब अमेरिका ने जो हमला किया परमाणु ठिकानों पर उसके बाद कल रात का जो ईरान का हमला था तो उसके बाद एक बड़ी आशंका जताई जा रही थी। तो आज के इस संबंध में जो संघर्ष एक बना था, एक आशंका बन पड़ी थी, लेकिन अंततः ये संघर्ष विराम पर बात आ रही है, तो इसको आप कैसे देखेंगे कि कितना बड़ा ये खतरा एक तरह से टलने की संभावना है?
चिंता ये बढ़ गई थी जो ये क्षेत्रीय युद्ध में परिवर्तित हो सकता है, और फिर इसराइल की ये बहुत मंशा थी, क्योंकि वहां पर जो एक फैसिलिटी है, न्यूक्लियर फैसिलिटी, जहां यूरेनियम एनरिचमेंट होता है ईरान में फोर्दो में, वहां पर वो फैसिलिटी ऐसी है जो भूतल से 90 मीटर नीचे उन्होंने उसको निर्मित किया है, और किसी भी ऐसे बम का वहां पर जाना बिल्कुल ही असंभव है जो इसराइल के पास हो या किसी और देश के पास हो। वो केवल अमेरिका के पास है ऐसे बम GBU-57, जिनको P-2 बॉम्बर, स्टेल्थ बॉम्बर्स ही ला सकते हैं, और वो ही उसको भेज सकते हैं। तो इसीलिए इसराइल की बहुत ही इच्छा थी जो किसी प्रकार से अमेरिका को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। और ये याद रखना चाहिए जो जब से 1979 से यहाँ पर ये इस्लामिक रिपब्लिक रिवोल्यूशनरी सरकार आई है, तब से इसराइल यही प्रयास करता रहा है जो अमेरिका को कैसे इसमें इन्वॉल्व किया जाए, परंतु अमेरिका इन्वॉल्व नहीं हुआ।
यहाँ पर हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अब क्योंकि तीनों देश ईरान, इसराइल और अमेरिका इसमें सक्रिय रूप से शामिल थे, हालांकि पूरी दुनिया और पूरा ग्लोबल ऑर्डर इसको बड़ी तल्लीनता से इस संघर्ष के परिणामों को भी सोच रहा था और इस संघर्ष को करीबी से देख भी रहा था और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी सबने रखी, तो ये तीनों देश अब इस संघर्ष के बाद किस तरह से इसका आकलन करेंगे, कैसे इसको देखेंगे कि उन्होंने क्या इससे हासिल किया या क्या उनकी जो प्रतिक्रिया रही इस पूरे संघर्ष में जो शामिल तीनों देश हुए, तो कैसे ले जाएंगे अपने अपने स्तर पर इस संघर्ष को?
सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ ईरान के बारे में, तो ईरान के पास कोई विकल्प नहीं रह गया था, क्योंकि ईरान के ऊपर इतने ताबड़तोड़ हमले किए थे इसराइल ने, जो उनका सारे जो मिसाइल सिस्टम है वो काफी हद तक उन्होंने उसको ध्वस्त कर दिया था, जो मिसाइल लॉन्चर्स थे उनको बहुत मात्रा में उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे कि क्षमता नहीं रह गई थी ईरान के पास ज्यादा मिसाइल्स को लॉन्च करने की, और उसके जो भी ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज हैं उनको भी उन्होंने बहुत हानि और डिस्ट्रॉय किया था। तो मैं समझता हूं जो ईरान की के पास कोई विकल्प नहीं था, और उसने बहुत इसको वेलकम किया होगा जो ये युद्ध विराम हो गया है। जहां तक इसराइल का सवाल है, तो इसराइल तो मैं समझता हूं 7 अक्टूबर 2023 को जो राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर कलंक लगा था, जो उन्होंने अपने देश की रक्षा नहीं कर पाए, तो काफी हद तक ये हमला करके और ये 10-12 दिन का युद्ध करके उन्होंने अपने ऊपर जो दाग था, जो धब्बा था, उसको धोने में वो काफी मात्रा में मेरे विचार से सफल हो गए हैं। कुछ प्रकार से कहा जाएगा जो इसराइल के लोगों के लिए वो फिर से एज अ हीरो बनकर उभरे हैं,
जी जी।
क्योंकि उन्होंने सारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान के वो एकदम नेस्तनाबूद कर दिए, और पूरी तरीके से डोमिनेंस रहा उनका उस एयर स्पेस पर ईरान के ऊपर। मनमानी से वो जाते थे और जहां पर भी हमला करना होता तो वो हमला कर सकते थे। हालांकि ये बात भी माननी पड़ेगी जो ईरान ने भी बहुत क्षति पहुंचाई है इसराइल को, चाहे हाइफा में, तेल अवीव में, जरूसलम में, बहुत उन्होंने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से वार किए हैं और उनको बहुत नुकसान पहुंचाया है। तीसरी बात, अमेरिका के हिसाब से देखा जाए तो देखिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति की मागा बेस है, जिसे कहा जाता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली जो बेस है, वो नहीं चाहती थी जो अमेरिका किसी भी प्रकार की जो पहली फॉरएवर वॉर, जो लड़ाई में आप जाइए और वो लड़ाई चलती ही रहती है। तो राष्ट्रपति ट्रंप का नजरिया इसमें बिल्कुल साफ था
जी।
जो हम इसमें अपने बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं भेजेंगे, सोल्जर्स नहीं भेजेंगे, जाकर हमला करेंगे, बम गिराएंगे, टोमाहोक मिसाइल से हमले करेंगे नतांज और इस्फहान के ऊपर और बाहर निकल आएंगे, तो यही उन्होंने किया। तो मैं समझता हूं जो राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की जो इसमें स्ट्रेटजी थी वो बहुत हद तक कामयाब हुई है, और जो ईरान की जो उसकी फैसिलिटीज थी काफी हद तक खराब हुई है, और ईरान को अब नेगोशिएटिंग टेबल पर आना पड़ेगा और अपने परमाणु अस्त्र के प्रोग्राम को एकदम खत्म करने का वादा करना पड़ेगा।
एक और सवाल, जो अरब देश हैं, पूरा मध्य पूर्व है या पूरा विश्व है, वो कैसे इस बात को देखेगा? क्योंकि कल दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें सामने आई थी, हालांकि संघर्ष विराम की बात उस वक्त नहीं आई थी, कि एक तो जो होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की ईरान की ओर से जो बात कही गई थी, और दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसके साथ जो सहयोग है उसके निलंबन की बात भी आई थी। तो ये इस तरह के जब संघर्ष होते हैं, तो अगर और आगे आने वाले समय में भी जब ऐसे संघर्ष की आशंका होगी, तो कैसे, अगर ईरान इन सभी बातों पर अमल करता है तो उसका परिणाम क्या हो सकता है, और विश्व इस इन दोनों जो निर्णय है उसको कैसे देख रहा है?
कोई भी देश, चाहे वो मध्य पूर्व के हो, भारत हो, या और विश्व के कोई और देश हो, कोई भी नहीं चाहता जो ईरान एक परमाणु अस्त्र बनाए। कोई नहीं चाहता जो एक और देश उभर कर आए जिसके पास की परमाणु अस्त्र हैं। तो इसीलिए अगर परमाणु अस्त्र की वहां पर जो फैसिलिटीज हैं वो अगर नष्ट की गई हैं, तो मैं समझता हूं जो देश परोक्ष रूप से ऐसा कुछ नहीं कहें, परंतु वो जरूर ये जानकर संतोष कर रहे होंगे जो क्षमता ईरान की परमाणु अस्त्र बनाने की है वो काफी कम हो गई है, पहली बात। दूसरी बात, आपने होर्मुज स्ट्रेट के बारे में पूछ कहा, तो देखिए ये सबको मालूम था, जो ये धमकी के लिए तो ठीक है, धमकी तो दी जा सकती है, जो होर्मुज स्ट्रेट बंद कर देंगे, वहां से करीब 20% तेल जो आता है पूरे विश्व में, तो उससे एकदम तेल की ऊर्जा की कमी हो जाएगी। परंतु सबको मालूम था जो ये ईरान कर नहीं पाएगा, क्योंकि एक तो उसके फिर संबंध जो है और देशों के साथ, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कतार वगैरह, जिनका तेल और गैस वहां से निकलकर जाती है,
जी जी,
उनके साथ उसके संबंध बहुत खराब हो जाएंगे। और चीन, जो कि सबसे बड़ा वहां से बड़ी मात्रा में आयात करता है तेल और गैस, और वो ईरान का बहुत घनिष्ठ मित्र है, तो उसके ऊपर भी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा इसका। तो इसीलिए ये समझा जाता था जो ये चीन इसमें बिल्कुल भी नहीं साथ देगा, और चीन ने कहा है जो ये खतरा जो है वो टल गया है। दूसरा, आपने कहा IAEA का, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, मेरे विचार से जैसे मैंने कहा, इसके बाद जब युद्ध विराम हो गया है तो जरूर अब नेगोशिएशन होगी, नेगोशिएटिंग टेबल पर ईरान को जाना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से फिर से इसको इन्फोर्स किया जाएगा, जो इंस्पेक्शंस हैं IAEA के वो फिर से प्रारंभ हो, जिससे कि ईरान फिर से परमाणु अस्त्र, इसकी जो एनरिचमेंट है, उसको आगे इतना ज्यादा नहीं ले जा पाए।
अब जो भी संघर्ष होते हैं, अक्सर हम उसको इस तरह से देखते हैं कि एक खेमेबाजी विश्व भर में होगी, लेकिन कुछ समय से हमने संघर्षों में देखा है कि देश अपने आर्थिक और राजनीतिक और कूटनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लेते हैं। तो इस संघर्ष से भी हमने क्या देखा कि जिस खेमेबाजी की आशंका थी, कैसे आप देखेंगे इस बात को?
जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो वो सभी अपने नेशनल इंटरेस्ट पर, अपने निजी हितों पर वो काम करेंगे, वो उसके ऊपर बात करेंगे, और सभी देशों ने यही किया है, जो चाहे वो शब्दों में ऐसा जरूर बताएं, जो इसराइल ने किया है, जो अमेरिका ने किया है, वो UN चार्टर का उल्लंघन है, NPT का उल्लंघन है, तो बातें करने के लिए वो जरूर इन दोनों देशों को कंडेम करें, परंतु इनके विरुद्ध कोई एक्शन लेने के लिए कोई भी देश राजी नहीं है, क्योंकि उनके जो अपने हित हैं वो इसमें हैं, जो ईरान एक परमाणु अस्त्र नहीं बना।
जी जी, बहुत धन्यवाद एम्बेसडर सज्जनहार, इस विषय पर आपने बहुत सटीक विश्लेषण और बहुत सी जानकारी हमारे साथ अपनी बातचीत में साझा की, बहुत धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे इसराइल ईरान संघर्ष में ताजा घटनाक्रम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अशोक सज्जनहार, पूर्व राजदूत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और यूट्यूब चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में